दिन भर 17 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में बजने लगी फोन की घंटी, सरकार का दावा, जम्मू के 5 जिलों में इंटरनेट शुरू।
17 टेलीफोन एक्सचेंजेस आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 96 इन द कश्मीर वैली आर फंक्शनल।
लेकिन घाटी से हटाए गए प्रतिबंध कितने प्रभावी?
माहौल बहुत ही बड़े वे में बदल चुका है, क्योंकि आज हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ही कम है।
और आज इंडिया बोल में होगी चर्चा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जरूरत क्या है? विशेष मेहमान होंगे रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर उदय भास्कर। आज प्रसारण पूरे एक घंटे का, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। भारत सरकार का कहना है कि भारत प्रशासित कश्मीर में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर घाटी के 100 टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 चालू कर दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अब भी बंद हैं। स्थानीय नेताओं समेत सैकड़ों लोग अब भी हिरासत में हैं। राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ प्रदर्शन भी हुए थे। इस बीच भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जम्मू से मोहित कंधारी।
जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि नियंत्रण रेखा पर शनिवार सुबह पाकिस्तान के साथ हुई गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान मारा गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना ने सुबह 6:30 बजे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना का एक जवान मारा गया। मारे गए जवान की पहचान देहरादून के रहने वाले लांस नायक संदीप थापा के रूप में हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज भूटान पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के दिल में भूटान के लिए खास जगह है।
भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। साथियों, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार है। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा।
सूडान में सत्ताधारी सेना और विपक्षी नागरिक गठबंधन के बीच एक समझौता हो गया है, जिसके तहत दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। समझौता समारोह में इथियोपिया और मिस्र के प्रधानमंत्री के अलावा दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। इससे पहले सूडान के प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल डिग्लो ने बीबीसी से कहा कि सेना समझौते का पूरी तरह से पालन करेगी। इस समझौते के साथ ही कई महीनों से जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन खत्म हो गए हैं। प्रदर्शनों के दौरान 3 दशक तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति ओमर अल बशीर का तख्तापलट कर दिया गया था। इस समझौते पर सूडान के बहुत से लोगों ने खुशी जाहिर की है। मैं 72 साल का हूं, लेकिन मैंने बशीर के पूरे कार्यकाल में कभी स्थिरता नहीं देखी। ईश्वर का शुक्र है, मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं सांस ले सकता हूं। हम बहुत कुछ सह रहे थे, सब कुछ बहुत महंगा हो गया था, कीमतें बहुत बढ़ गई थी। ये थे एक सूडानी नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में इस सप्ताहांत लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कई शांतिपूर्ण रैलियां निकाली। हजारों शिक्षक हांगकांग के मुख्य द्वीप पर भारी बारिश के बीच इकट्ठा हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में हवाई अड्डे पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद चीन ने कहा था कि वो हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे बड़े झुग्गी बस्ती वाले इलाके में आग लग गई, जिसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। अधिकारियों के मुताबिक कई झुग्गियों में पॉलीथीन की छत थी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली। आग को बुझाने में 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और घरों में काम करने वाले लोग हैं। यमन में अलगाववादियों ने एडन शहर की उन प्रमुख जगहों को छोड़ दिया है जिन्हें हाल ही में उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। यमन की सरकार के मुताबिक लड़ाके सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय बैंक और दूसरी जगहों से पीछे हट गए हैं। अलगाववादी दक्षिणी यमन के लिए आज़ादी चाहते हैं। हुती विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध में वो सरकार के साथ हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अलगाववादियों ने सरकार को बाहर कर एडन को अपने कब्जे में ले लिया था। इस बीच खबर है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने पड़ोसी सऊदी अरब में तेल भंडारों पर हवाई हमले किए हैं। उन्होंने एक रिफाइनरी और तेल भंडार को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। घटनास्थल पर मौजूद एक सूत्र ने बताया कि हमले की वजह से थोड़ी आग लग गई थी। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और तेल के उत्पादन पर भी असर नहीं पड़ा है। इटली के गृह मंत्री मात्यो साल्विनी ने कहा है कि वो एक स्पेनिश चैरिटी के साथ जारी विवाद में हार नहीं मानेंगे। दरअसल स्पेनिश चैरिटी ओपन आर्म्स प्रवासियों से भरी एक नाव को इटली के तट पर उतारना चाहती है। इस नाव में 134 प्रवासी सवार हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। ये कार्यक्रम आप शाम 7:30 से 8:30 बजे तक यानी पूरे एक घंटे तक सुन सकेंगे। सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण खबरें और फिर शुरू करेंगे इंडिया पोल। दिनभर की शुरुआत भारत प्रशासित कश्मीर की खबर से, जहां करीब 2 हफ्ते तक खामोश रहने के बाद आज कई फोनों की घंटियां बजने लगी। प्रशासन ने कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने मीडिया को बताया कि जम्मू के कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बहाल हो गई है। सुनिए प्रधान सचिव रोहित कंसल ने क्या कहा।
There has been no untoward incident reported so far. Public transport has started flying. And we are getting...
अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन शुरू हो गया है। ऐसी भी उत्साहजनक खबरें आ रही हैं कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में सामान्य आवागमन शुरू हो गया है। जहां तक दूरसंचार की बात है तो कश्मीर घाटी के कुल 96 में से 17 टेलीफोन एक्सचेंज ने काम करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से लैंडलाइन सेवा बहाल हो रही है। हम लोगों की कोशिश है कि आज शाम तक कुल टेलीफोन एक्सचेंजों में से आधे काम करना शुरू कर दें। कम से कम 5 जिलों में हमने मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी कुछ फीचर्स के साथ खोल दिया है और धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक अन्य इलाकों में भी सेवाएं बहाल की जाएंगी।
आपने प्रधान सचिव रोहित कंसल की बात सुनी। अब से कुछ वक्त पहले मैंने भी कश्मीर घाटी के उस होटल में फोन लगाया जहां हमारे साथी आमिर पीरजादा मौजूद हैं। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद घाटी कितनी बदली हुई दिख रही है। सुनिए ये बातचीत।
लैंडलाइंस खोल दी गई है और ये वो इलाके हैं जो पीसफुल, मोर और लेस पीसफुल ही रहते हैं, जिसमें सिविल लाइंस आती है, राजबाग आता है। जो रोहित कंसल के नंबर्स थे उन नंबर्स में ये बोला गया था, आउट ऑफ 96 एक्सचेंजेस 17 एक्सचेंजेस हमने फंक्शनल कर दिया है। तो ये सिर्फ लैंडलाइंस की बात हो रही है जिसपे ब्रॉडबैंड अभी तक नहीं चल रहा है, इंटरनेट किसी भी प्रकार का इंटरनेट अभी भी नहीं चल रहा है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, बेसिकली 10-15% श्रीनगर से शहर में लैंडलाइन रिस्टोर कर लिया गया होगा, लेकिन मेजॉरिटी, मोर देन मेजॉरिटी में अभी भी कोई भी नेटवर्क, कोई भी फोन, कोई भी लैंडलाइन अभी नहीं चल रही है। रही बात कर्फ्यू की, रिलैक्सेशन की, तो रोहित कंसल ने ये भी बोला कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन के एरियाओं में हमने रिलैक्सेशन दी है, कर्फ्यू में लोगों को आने जाने की इजाज़त है। तो श्रीनगर की हम बात करें तो मेजॉरिटी एरियाज में रिलैक्सेशन दी गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज की प्रेजेंस कम कर दी गई है और जो बैरिकेड्स, तारे, नोकिलेदार तारे लगी थी वो भी उठा दिए गए हैं। तो ट्रांसपोर्ट सड़कों पे दिख रहा है, उतना रश नहीं है, उतने गाड़ियों की उतनी तैदाद नहीं है, लेकिन गाड़ियां चल रही है। अगर हम ओल्ड सिटी डाउनटाउन की बात करें, डाउनटाउन में सुबह रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी रिलैक्स कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद ही लोगों ने जो ही बाहर आना शुरू किया, स्टोन पेल्टिंग के भी कुछ वाक्यात सुनने को मिले, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर से वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी।
जिन इलाकों में छूट दी गई है वहां के लोगों से कुछ आपने बात की, कितनी राहत है?
तो मैं आपको अपने होटल की ही बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको सुबह ही बता रहा, हमारे होटल पे जो एक रिसेप्शनिस्ट है वो साउथ कश्मीर से है, वो त्राल से है। तो वो सुबह ही मुझे बोल रहे हैं कि मैंने पिछले 15 दिनों से बीवी से बात नहीं की थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है। तो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करते फोन, आप करिए ना, अब तो फोन चल पड़ा है। तो उनका जवाब था यहाँ पे फोन चल रहा है लेकिन साउथ में मेरे घर पे फोन नहीं चल रहा है, मैं फोन करूँ तो करूँ किसे।
इसके अलावा भी आप बाहर निकले, आज क्या कुछ आपने देखा, कितना बदला हुआ था घाटी का माहौल आज के लिए?
माहौल बहुत ही बड़े वे में बदल चुका है क्योंकि आज हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ही कम है, बहुत ना के बराबर है। क्योंकि अगर हम पिछले एक हफ्ते से जो हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती थी, जगह बैरिकेड्स लगे हुए थे, लेकिन आज बैरिकेड्स नहीं थे, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही कम नंबर्स में थे।
तो ये आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करके कि बाजार कब तक खुल सकते हैं?
आज सुबह ही मेरी बात हुई थी, हम कहीं पे रुके थे, एक दुकान की आधा खुला था कुछ खरीदने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था कि दुकान कब खुलेंगे, ये बाजार कब खुलेगा, तो उनका जवाब था देखिए हम सबको काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सबसे पहला इनिशिएटिव कौन लेगा दुकान खोलने का, एक वो पहला इंसान जो दुकान खोलेगा या कोई लीडर या कोई सामने आके ये बोले कि अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मल है, लेकिन लोगों के अंदर अभी वो नॉर्मलसी नहीं आई है।
और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने हॉस्पिटल का भी दौरा किया, वहाँ आपने क्या कुछ देखा?
तो आज सुबह हम SMHS हॉस्पिटल में गए क्योंकि हमें एक सोर्स की तरफ से एक रिपोर्ट मिला था कि वहाँ पे कुछ पैलेट विक्टम्स को लाया गया था जो इंजर्ड हुए थे सोरा में, तो हमें उसकी रिपोर्ट आई थी, तो हम जल्दी से जब वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उस वार्ड में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा इंक्वायर किया हमने, वहाँ पे ये पता चलता है वो आए थे 2 घंटे वहाँ रुके, उनको कुछ फर्स्ट एड दिया गया, सडनली वो भाग गए, उनको वहाँ रुकना था, डॉक्टर्स की एडवाइजरी थी उनको अभी कुछ और घंटे वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक वो स्टेबलाइज ना हो।
तो आखिर वो चले किस लिए गए?
तो फिर हमने डॉक्टर से यही पूछने की कोशिश की लेकिन वो चले फिर कैसे गए, तो उन्होंने बोला हम बस एडवाइज कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है जितने भी स्टोन पेल्टर्स या जितने भी पैलेट विक्टम्स यहाँ आते हैं उनके अंदर एक डर भी है, क्योंकि एक बार अगर आप हॉस्पिटल में आए तो उसका मतलब है आपका नाम पुलिस के FIR लिस्ट में भी आ सकता है, देन उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है।
ये थे BBC संवाददाता आमिर पीरजादा। भारत प्रशासित कश्मीर के मुद्दे पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में चर्चा की। इस बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और ये फैसला आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लिया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मीटिंग को एक बड़ा कदम बताया। इस मामले पर किसने क्या कहा बता रहे हैं हमारे साथी संदीप राय अपनी इस रिपोर्ट में।
भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने बैठक के बाद कोई बयान जारी नहीं किया लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत चीन और पाकिस्तान के राजदूतों ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने पक्ष रखे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार का फैसला पूरी तरह आंतरिक मुद्दा है।
Our national position was and remains that matters related to Article 370.
हमारा राष्ट्रीय पक्ष है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मुद्दा पूरी तरह आंतरिक मामला है और इसका बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार और संसद के हालिया फैसले का मकसद है कि कुशल प्रशासन को बढ़ावा दिया जाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमारी जनता का सामाजिक आर्थिक विकास आगे बढ़े। सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने को पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है जम्मू कश्मीर में गंभीर हालात पर बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई गई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक फोरम ने इस मुद्दे को उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलिहा लोधी ने कहा
The voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world.
कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की आवाज आज दुनिया के सर्वोच्च कूटनीतिक फोरम में सुनी गई। वो अकेले नहीं हैं, उनकी तकलीफें और दर्द और कब्जे की वजह से जो नतीजे हैं उनको आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुना गया है। इस मीटिंग से ये तथ्य जाहिर होता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवादित इलाका है। चीन के अलावा सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला माना और दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत से मुद्दे को हल करने की अपील की। चीन के राजदूत झांग ने कहा कि सदस्य देश मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। चीन ने बैठक में लद्दाख का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अनुच्छेद 370 लद्दाख से भी हटा है और वह इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। संदीप राय, BBC दिल्ली।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है इंडिया बोल का। चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया है कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है इस घोषणा का मतलब? क्या इससे रक्षा तैयारियों को मदद मिलेगी या होगा नुकसान? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हम आपको बता दें कि हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811 7000 और 1811 7001। ये भी बता देते हैं कि ये कार्यक्रम रात 8:30 बजे तक जारी रहेगा। बतौर मेहमान चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर कोमोडोर सी उदय भास्कर। साथ में है बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी। स्वागत है आपका और स्वागत उन तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो घोषणा की, कई रक्षा विशेषज्ञ उसे आजाद भारत के 72 सालों में सैन्य सुधारों की दिशा में सबसे बड़ा कदम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के लाल किले से दिए गए पहले भाषण में सरकार के फैसले की जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद गठित करने का फैसला किया है। CDS के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर तीनों सेनाओं को एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हम आगे कोशिश करेंगे कि वो आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनाए। हालांकि उन्होंने यही कहा कि ये जो पद होगा वो तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय लाएगा। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद इस हिस्से की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सरकार ने अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की राय है कि CDS प्रधानमंत्री और सरकार के सिंगल पॉइंट यानी एकीकृत सलाहकार होंगे। ये पद गठित करने की सिफारिश करीब 20 साल यानी कारगिल संघर्ष के बाद से ही हो रही थी। 20 साल पहले से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अब तक क्या अड़चनें रहीं, CDS के आने से क्या बदलाव आएंगे, उसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी और क्या इस पद के गठन के बाद कुछ परेशानियाँ भी सामने आ सकती हैं, ये बात हम रखेंगे, ये चर्चा करेंगे कोमोडोर सी उदय भास्कर साहब से। लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर।
मैं कुमारी प्रियदर्शनी रानी बोल रही हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश से, बिलाइंड।
जी प्रियदर्शनी जी, क्या कहना चाहती हैं आप इस मुद्दे पर?
थोड़ा सा कहना चाहती हूं।
चर्चा हमारी कश्मीर मुद्दे पर नहीं है, CDS के मुद्दे पर है, यानी एक पद जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के ऊपर होगा, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उदय भास्कर साहब, मैं आपको चर्चा में सीधे तौर पर शामिल करना चाहूंगा। मांग लगातार उठ रही थी 20 सालों से, जैसे मैंने अभी कहा भी, कारगिल की जो एक समीक्षा रिपोर्ट बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये मामला गया, उन्होंने भी इसकी सिफारिश की, उसके बाद तमाम सारी कमेटियों ने इसकी सिफारिश की, एक बड़ा फैसला, क्या कोई बदलाव आने की उम्मीद देखते हैं?
ये जो मोदी साहब ने लाल किले से जिस प्रकार से उन्होंने घोषित किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए उन्होंने एक प्रकार से पॉलिटिकल स्तर पर अप्रूवल जैसे उन्होंने दिया है, ये अपने आप एक काफ़ी मैं कहूँगा कि अहम अनाउंसमेंट है। और जैसे आपने कहा है, इसका जिक्र जो है औपचारिक रूप से पहली बार हुआ था कारगिल के युद्ध के बाद। अटल जी प्रधानमंत्री थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने बनाया और एक अरुण सिंह कमेटी बना था। और आपको याद होगा अरुण सिंह साहब जो हैं वो राजीव गांधी साहब के कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे डिफेंस के लिए। तो ये भारत के राजनीति में एक बड़ा दिलचस्पी का एक पहलू है कि राजीव गांधी साहब के जो कांग्रेस सरकार में जो डिफेंस का जो देखभाल कर रहे थे पॉलिटिकल स्तर पे, उन्होंने वाजपेयी जी के सरकार में, यानी कि अर्थात ये मैं कहूँगा विश्लेषक के दृष्टिकोण से कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रकार का
आम सहमति सी बनी।
बिल्कुल।
मैं आपको रोक रहा हूँ सी उदय भास्कर साहब, मैं राजेश जोशी हूँ और श्रोताओं को नमस्कार। एक तो थोड़ी घोषणा पहले कर दें कि जो श्रोता अभी हमारे कार्यक्रम को अभी अभी सुनना शुरू किया है, उन्हें बता दें कि ये कार्यक्रम 8:30 बजे तक चलेगा और 1811 7001802-7001 वही फ़ोन नंबर्स हैं जिस पर आप अपनी कोशिश कीजिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मुझे समझाइए कि ये होता क्या है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी तक जो कल्पना है, जिस प्रकार से इसको लोगों ने सोचा है, ये इसका रोल यही होगा कि भारत के जो तीनों सेना जो है, जैसे वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना, ये अलग अलग अपनी जो पटरियों पे चलते हैं और कई सारे बड़े देश, लोकतांत्रिक देश में इसकी एक ज़रूरत की महसूस उन्होंने किया है कि एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र होना चाहिए मिलिट्री और पॉलिटिकल स्तर के बीच में। तो संक्षेप में यही है कि CDS जो पद होगा वो एक सिंगल पॉइंट ऑफिस होगा जो कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के बीच में वो एक ट्रायंगुलेशन जिसकी हम बात करते हैं,
और जो जो, जो सेना के तीन अंग हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, उनसे उनका इससे कैसा रिश्ता होगा?
सब देखिए, एक बड़ा एक विडंबना है भारत के ढांचे में कि अगर आप भारत का जो रूल्स ऑफ बिजनेस होता है गवर्नेंस का, उसका अगर आप देखेंगे, भारत की जो सुरक्षा है
जी,
उसकी जिम्मेदारी अगर आप ऑफिशियल लेवल पे देखें किसके पास है, वो है डिफेंस सेक्रेटरी के पास।
अच्छा।
जो कि एक सिविलियन है, आम तौर पे हमारे IAS के अफसर हैं
जी हाँ।
और जो हमारे मिलिट्री के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। और कारगिल के युद्ध के बाद जब कारगिल कमेटी रिपोर्ट बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और अरुण सिंह साहब की जो कमेटी है, उन्होंने बहुत सख्त तरीके से कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत की हायर डिफेंस मैनेजमेंट में एक बदलाव आना चाहिए और उसमें CDS का जो पद है उसको सही जगह पे उसको स्थापित करना चाहिए।
अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या थल सेना अध्यक्ष से ऊपर होगा या वायुसेना अध्यक्ष जो है उनसे ऊपर होगा, जल सेना अध्यक्ष से ऊपर होगा, क्या रिश्ता होगा, इस पे समझेंगे। लेकिन पहले कुछ श्रोता वात्सल्य,
श्रोताओं
से अगर बात कर ले,
क्या इशारा कर रहे हैं
जी, क्या नाम है आपका, नाम बताइएगा
जी। अनिल पुंडीर।
अनिल पुंडीर साहब कहाँ से बोल रहे हैं
जी? मैं सांगला हिमाचल प्रदेश की नौर से बोल रहा हूँ।
अरे वहाँ बहुत अच्छा मौसम होगा वहाँ तो आजकल
जी। आजकल
बारिश हो रही है?
बारिश हो रही है हल्की हल्की।
अच्छा, तो और चर्चा राजनीतिक क्या हो रही है? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पेचीदा मसला एक तरह से, मुझे तो बहुत समझ में नहीं आया ये
जी।
आपकी नज़र में ये इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है?
जी मैं समझता हूँ कि तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और डिसीजन मेकिंग में जो डिले है वो भी कम होगा।
क्या ये बात सही कर रहे हैं उदय भास्कर जी?
ये सब सही बता,
देश देश के लिए बड़ा अच्छा रहेगा शायद।
अच्छा, ये इसमें एक और बहस जो हम आगे सवाल लेंगे कि देश के लिए बहुत अच्छा होगा, फैसला जल्दी होगा, ये भी कह रहे हैं, लेकिन एक आशंका भी जताई जाती है कि अगर पावर एक ही व्यक्ति पर निहित हो जाए तो वो एक तरह से उस पर कोई अंकुश लगाम नहीं रहती है, ये भी बात लोग
जी, राजेश जी। और ये भी कहा जाता है कि जो इस नियुक्ति में इतनी देरी हो रही है, शायद उसकी भी एक बड़ी वजह यही
है जी।
क्योंकि 20 साल से लिंगर और हो रहा था, और उदय भास्कर साहब बताएंगे यहाँ बैठे हैं कि जिस तरीके से ये पद गठित किया गया, इसके बीच में एक और पद आया जिसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जो है, वो पद किस तरह का पद है और उसमें और इसमें क्या फर्क होगा?
इन पेचीदगियों पर आने से पहले एक दो और श्रोता इंतजार कर रहे हैं, उनको ले लेते हैं, लेकिन इस सवाल को याद रखिएगा। नए श्रोता, क्या नाम है आपका, बताइएगा। एक हमारे हिमाचल से थे, उनको हमने धन्यवाद कह दिया। आप कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
जी मैं मनोज चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ।
चंडीगढ़ से मनोज?
हाँ जी, मनोज कुमार बोल रहा
हूँ। मनोज कुमार जी,
बिहार से रहने वाले। हाँ जी,
हाँ बताइए मनोज जी, क्या आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है?
हाँ जी, ये बहुत अच्छा कदम है सर, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। इससे मुझे लगता है कि मतलब कोऑर्डिनेशन, जितने भी हमारी सेनाएं हैं ना, उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और कुछ भी अगर डिसीजन लेना होगा, कोई भी कहीं पे भी पॉइंट है, सबको एक साथ देखा जा सकता है सर।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आगे भी कोशिश कीजिएगा, हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में अक्सर आएं और अपनी बात रखें। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, क्या नाम बताएं आपने अपना?
हेलो
जी हाँ, नाम बताइएगा।
जयमल राठौड़ बोल रहा हूँ सर, राजस्थान के नागौर जिले।
जयमल राठौड़ साहब
जी,
राजस्थान के नागौर जिले से बोल रहे हैं
जी, परबत स्टेशन से।
अच्छा, तो रेडियो के श्रोता होंगे पुराने आप तो?
जी जी लगभग 20 सालों से हम लोग बीबीसी सुन रहे हैं।
अच्छा ठीक है, तो बताइए इस ये जो सेना का जो फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने,
मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीडीएस वाला फैसला ना, उससे कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र तानाशाही की ओर ना चला जाए।
ये वो सवाल है जिस पर मैंने आपको, आपको ऐसा क्यों लगता है?
मुझे इसलिए लगता है कि एक व्यक्ति के पास अगर ये सत्ताएं केंद्रित हो जाएगी तो मतलब पावर का वो एक,
जी जी आप मुझे रेडियो पर आप अपनी आवाज खुद भी सुन रहे हैं, इसलिए अगर आप रेडियो बंद कर दें उसके बाद हमसे बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है कि अगर ये सब ताकत एक ही व्यक्ति में निहित हो गई तो निरंकुशता का खतरा है। उस सवाल पर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे।
सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये जो एक प्रकार का चिंता या एक भय जो पैदा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति को इस प्रकार का हम स्थापित करेंगे ढांचे में कि यह किसी प्रकार का मिलिट्री कू या इस प्रकार का कोई एक एक्सीजेंसी या एक सिचुएशन का डर लगता है, ये मैं कहूँगा बेबुनियादी है। और 40 साल वर्दी पहनने के बाद मैं काफ़ी विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारतीय जो फौज है, तीनों अंग स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना, वो एक प्रकार से अपनी जो सिद्धांतों में ये लोकतांत्रिक लहर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है और जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो प्राइमेसी जिसको कहा जाता है वो स्वीकार करते हैं और वो हमारे लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसका एक बहुत खास पहलू है। और जहाँ तक CDS का जो पद है, ये एक गलत फहमी है कि ये तीनों अध्यक्ष जो इस वक्त हैं जिसको हम 4-स्टार जनरल कहते हैं, जनरल साहब हैं आर्मी में, एडमिरल साहब हैं नेवी में और एयर चीफ मार्शल वायुसेना के, जो भी CDS अभी बनेंगे जैसे मोदी साहब ने ऐलान किया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये 5-स्टार होंगे
या 4-स्टार होंगे। एक बड़ी बहस इसको लेकर भी चल रही है।
तो सबसे पहले ये बात, ये अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरा ये कि उनके पास कोई किस प्रकार का ऑपरेशनल जो कंट्रोल होगा या उनके पास एसेट्स क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी हमारे स्थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, मान लीजिए अभी रावत साहब हैं
जी,
उनके पास जो सेना है, बार बार कहा जाता है कि इंडियन आर्मी इज 1 मिलियन प्लस, तो यानी कि उनके पास उतना एक आर्मी है उनके नेतृत्व में, उनके कमांड में
जी।
तो भारत के आर्मी चीफ बहुत ही पावरफुल हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसी प्रकार से भारत के जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं उनके पास पूरा एयर पावर देश के, उनके नेतृत्व में है, और इसी प्रकार का नौसेना। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि CDS जब बनाएंगे क्या वो ऑपरेशनल कमांड भी स्वीकार करेंगे, अर्थात ये फिर हमारे चीफ्स के पास ऑपरेशनल कमांड घट जाएगा,
कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल
उनका जो है स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तो जो नागौर से सवाल जो इन्होंने पूछा है, मैं इसको सारे श्रोताओं को यही बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर CDS चाहे 5-स्टार के हो या 4-स्टार के हो, उससे भारतीय जो लोकतांत्रिक जो लहर है, जो उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। ताकि लोगों के मन में ये चिंता नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे या कोई एक नया पावर सेंटर,
कोई बदलाव आएगा, वो पावर सेंटर नहीं आएगा। हम इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं इंडिया बोल। ये कार्यक्रम अभी जारी है, अगले आधे घंटे में हम CDS की नियुक्ति के ऐलान को लेकर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन पहले नज़र डाल लेते हैं अब तक के विश्व समाचारों पर। समाचार सुनाएंगी गुरप्रीत सैनी।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत सरकार का कहना है कि भारत प्रशासित कश्मीर में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर घाटी के 100 टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 चालू कर दिए गए हैं। इस बीच भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज भूटान पहुंचे हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। सूडान में सत्ताधारी सेना और विपक्षी नागरिक गठबंधन के बीच एक समझौता हो गया है जिसके तहत दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। समझौता समारोह में इथियोपिया और मिस्र के प्रधानमंत्री के अलावा दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। इससे पहले सूडान के प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल डिग्लो ने बीबीसी से कहा था कि सेना समझौते का पूरी तरह से पालन करेगी। हांगकांग में इस सप्ताहांत लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कई शांतिपूर्ण रैलियां निकाली। हजारों शिक्षक हांगकांग के मुख्य द्वीप पर भारी बारिश के बीच इकट्ठा हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हांगकांग पर चीनी सरकार के रुख के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला, तो वहीं मेलबर्न में शुक्रवार को हांगकांग में जारी प्रदर्शन के समर्थन में आयोजन हुआ। हाल के हफ्तों में कार्यकर्ताओं ने दोनों पक्षों के समर्थन में रैलियां निकाली हैं, कुछ में तो झड़पें भी हुई। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से चीनी लोग रहते हैं, साथ ही वहाँ 2 लाख से ज़्यादा चीनी छात्र पढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे बड़े झुग्गी बस्ती वाले इलाके में आग लग गई, जिसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। अधिकारियों के मुताबिक कई झुग्गियों में पॉलीथीन की छत थी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली। आग को बुझाने में 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। यमन में अलगाववादियों ने एडन शहर में उन प्रमुख जगहों को छोड़ दिया है जिन्हें हाल ही में उन्होंने कब्जे में ले लिया था। यमन की सरकार के मुताबिक लड़ाके सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय बैंक और दूसरी जगहों से पीछे हट गए हैं। अलगाववादी दक्षिणी यमन के लिए आज़ादी चाहते हैं। हुती विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध में वो सरकार के साथ हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अलगाववादियों ने सरकार को बाहर कर एडन को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच खबर है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने पड़ोसी सऊदी अरब में तेल भंडारों पर हवाई हमले किए हैं। उन्होंने एक रिफाइनरी और तेल भंडार को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल और चर्चा हो रही है सीडीएस की नियुक्ति से रक्षा तैयारियों को फायदा मिलेगा या फायदा नहीं मिलेगा। स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर साहब। मैं आपसे जो एक सवाल था, आपने बताया जैसे इसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक सवाल ये उठता है फिर 20 साल तक क्या दिक्कत हुई? क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तैयार हो गई थी, बाद की सरकारें भी इस पक्ष में दिखती थी, फिर इतना लंबा टाइम क्यों लगा?
कारण ये है कि अभी ये पता चलता है कि अटल जी के नेतृत्व में जब यह रेकमेंडेशन बनाया था, ये 2001 की हम बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि उसी साल में दो बहुत बड़ा जो घटनाएं हुई थी, एक था न्यूयॉर्क 9/11
जी,
दूसरा था भारत में दिसंबर के महीने में हमारे संसद पे हमला हुआ था, एक दहशतगर्दी हमला। तो मुझे लगता है कि 2002-03 में इस मुद्दे के ऊपर जो सहमति बनना था, राजनीतिक सहमति, वो एक प्रकार से पटरी से हट गया था। और अभी ये भी पता चलता है कि जब अटल जी कुछ निर्णय लेने की तैयारी कर रहे थे कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से एक आध लोगों ने एक प्रकार का, शायद अटल जी से उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन या एक प्रकार से आप कह सकते हैं हिचक
जी,
कि इस प्रकार का कदम शायद हमको नहीं लेना चाहिए, और उनके तरह तरह के मैं कहूँगा ऐतिहासिक कारण थे
जी। दिक्कत सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच में थी या सेनाओं के बीच में भी तालमेल की कमी थी जो
ये सही बात है। दूसरा पहलू यह था कि तीनों स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में भी ज्यादा मैं कहूंगा कि वायुसेना की तरफ से एक प्रकार का उनके अपने ही कुछ कारण थे।
ये जो कारण है, इन कारणों पर बात करते हैं कि वायुसेना की तरफ से ही इस तरह के ऑब्जेक्शंस क्यों आए।
कारण यह है कि मैं इसी बात में मैं आ रहा था कि ऐतिहासिक कुछ इसका संदर्भ है, और वो ये है कि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उस वक्त
1971
की बात है, जब मानेकशॉ साहब हमारे स्थल सेना के अध्यक्ष थे, हमारे एयरफोर्स के थे एयर चीफ मार्शल लाल, पीसी लाल, और उस युद्ध के बाद भी और उस युद्ध के समय पर भी ऐसा लगा कि भारतीय ढांचे में स्थल सेना का बहुत भारी एक भूमिका है, और यदि किसी प्रकार का सीडीएस या इंटेग्रेटेड तरीके से अगर हम ढांचा बनाएंगे, एयरफोर्स का एक मैं कहूँगा कि चिंता था प्रोफेशनल तरीके से कि आर्मी के जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो आर्मी के हाथ में चला जाएगा, और जो एयर पावर का जो इस्तेमाल जो होता है कि उसका पूरा जानकारी आर्मी के पास नहीं है, और ये जो प्लानिंग होता है ऑपरेशनल फिलॉसफी और ऑपरेशनल जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स में काफ़ी अंतर है, ये एयरफोर्स का एक मैं कहूँगा कि बुनियादी उनके मन में ये धारणा है, और ये भारत के लिए केवल ये नया यानी कि तजुर्बा या अनुभव नहीं है। अगर आप बाकी बड़े देश भी देखेंगे जैसे अमेरिका का आप इतिहास देखिए या ब्रिटेन का, वहाँ पर भी एयरफोर्स जब बनी थी उनके मन में ये एक जो इंस्टीट्यूशनल या संस्थानिक एक उनका एक क्या कहते हैं कन्विक्शन था कि एयर पावर शुड बी इनडिविजिबल और एयरफोर्स के पास ही होना चाहिए
पूरी ताकत, उनके पूरी ताकत
चाहिए। और तो आपको ये जहां चाहिए आप हमें बताइए, हम आपको एयर पावर वहां
अपने ऊपर किसी और को नहीं होना देना चाहते हैं। यही इनहेरेंट जो उनकी उनकी एक
परंपरा है या
परंपरा है या दर्शन है उनका, वो अब भी मौजूद रहेगा। कुछ श्रोता और आए हैं, उनको बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम वापस में बात करते रहेंगे लेकिन उनको भी शामिल करें। आप अपना नाम बताइए, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो या वात्सल्य जी की आवाज तो भी चुप है
जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप बताएं, अपनी बात रखें जी। लगता है संपर्क कट गया, लेकिन जिस बात को आप कह रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा।
नहीं कोई आ गए हैं श्रोता जी, नाम बताइएगा अपना।
हाँ जी, मैं कुलदीप सिंह जाखड़ गांव चौटाला डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से बोल रहा
हूं। अरे बिल्कुल नजदीक से बोल रहे हैं आप जाखड़ साहब, अपने बस रेडियो की आवाज कम कर दें, अपनी आवाज आप खुद सुन रहेंगे लेकिन उसमें डिस्टर्ब होगा। अब ये बताइए जाखड़ साहब कि आप ये जो फैसला किया है प्रधानमंत्री ने
जी,
आप उसको किस नजर से देखते हैं?
ये बहुत बढ़िया फैसला है जी। देखो, एक प्रधानमंत्री को फैसला लेने के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। अब तीनों चीफ ऑफ स्टाफ है तो उनको कोऑर्डिनेशन के अंदर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री एक आदमी से वो इनपुट लेके और देश के हित के अंदर फैसला ले सकता है, कोई भी देश के अंदर मुश्किल आए तो।
अच्छा जाखड़ साहब, जब आपने ये बात कही कि कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन की बात और भी तो श्रोता कह रहे हैं, यहाँ पर मेरे सामने एक लेख है जो इंडियन एक्सप्रेस में सुशांत सिंह ने काफ़ी पहले लिखा था। मैं उदय भास्कर जी आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और जाखड़ जी आप भी बने रहिए टेलीफोन लाइन पे, आप काटिएगा मत फोन। इसमें ये सुशांत सिंह कोट कर रहे हैं स्टीवन विल्किंसन प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने नेहरू की जो फौजी फैसले थे उन पर टिप्पणी की, और वो कहते हैं कि 1955 में नेहरू ने यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेज की जो हायरार्की थी उसको तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा, क्योंकि नेहरू दरअसल ये चाहते थे कि फौज इतनी ज़्यादा मजबूत न हो जाए कि सिविलियन जो लीडरशिप है वो उसके उससे कमज़ोर हो जाए, इसी तरह की आशंका जताई जाती है। तो ये जो कह रहे हैं और हमारे दूसरे श्रोता भी कह रहे हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, बहुत अच्छा फैसला है, नेहरू ने 1955 में ये फैसला क्यों किया?
नेहरू साहब ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद भारत का जो फौजी ढांचा आज़ादी से पहले एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के पास होता था, जिनके पास यूनिटी ऑफ कमांड था, और नेहरू साहब का अपना एक प्रकार का मैं कहूँगा कि एक बिलीफ था कि आज़ाद देश जो भारत बन गया था कि शायद उनको इतनी फौज की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम एक पीस लविंग नेशन हैं, और उनका अपना ये व्यक्तिगत राय था कि मिलिट्री को हम धीरे धीरे कम कर देंगे ताकि हम बाकी डेवलपमेंट और दूसरे क्षेत्रों में जो भी भारत के पास रिसोर्सेज हैं हम उनको वहां इस्तेमाल कर पाएंगे, ये उनकी अपनी धारणा थी।
जाखड़ साहब आप इससे सहमत हैं?
बिल्कुल सहमत हूँ सर। देखो, एक फैसला लेना हो तो देखो तुरंत कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्रधानमंत्री को बड़ा आसान होता है कि एक आदमी जो बिल्कुल तैयार है, जो चीफ ऑफ डिफेंस है, उसके अंदर वो तीनों जो सेनाओं का है उनका इनपुट लेके सारा उसको पता होता है और तुरंत फैसला लेने के अंदर ये
जी जी
फैसला है जी।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाखड़ साहब, आप सुनते रहिए कार्यक्रम, हम दूसरे श्रोताओं से बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे?
मैं यही कह रहा था कि संक्षेप में कि नेहरू साहब के मन में यह था कि जो यूनिटी ऑफ कमांड था कमांडर इन चीफ वगैरह उसको उन्होंने एक प्रकार से बदल दिया और अलग अलग बना दिया आर्मी नेवी एयरफोर्स। और एक हाथ बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपने ये बात उठाया है, माउंटबेटन साहब ने एक बार अपने किताब में ये लिखा था कि जब नेहरू साहब उनसे यूके गए थे, ये शायद 1960 की बात है, माउंटबेटन साहब ने पंडित नेहरू को कहा कि देखिए अभी समय आ गया है, आपका जो क्षेत्रीय माहौल है उसमें कई प्रकार के काले बादल हैं, तो आप जनरल थिमैया साहब को CDS बना दीजिए, क्योंकि थिमैया साहब का एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोफाइल था यूनाइटेड नेशन
जनरल
थिमैया कोरिया वगैरह,
यानी 1950 के दशक की आप बात
बिल्कुल। तो उन्होंने एडवाइस दिया था नेहरू साहब को कि साहब आप थिमैया साहब आपके बड़े काबिल हैं, उनको बनाइए CDS, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और भारत के जो भी चुनौतियां आ सकते हैं सामना करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। परंतु नेहरू साहब ने मना कर दिया
और 1963 में, मैं इसी से कोट कर रहा हूँ जो मैंने अभी बात कही, फरवरी 1963 में जब 1962 में चीन से भारत युद्ध हार चुका है उसके बाद भी नेहरू ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला तीन अलग अलग जो फोर्सेस के चीफ हैं अलग अलग करने का फैसला इसलिए किया है, अंग्रेजी में बोलता हूँ, टू रिड्यूस द रोल ऑफ द मिलिट्री ऑन द इंडियन सीन। यानी नेहरू जैसा जो दूरदर्शी नेता था वो नहीं चाहता था कि इंडियन सीन में फौज का बहुत ज़्यादा भयंकर बड़ा रोल हो जाए, सिविलियन जो नेतृत्व है उसके नीचे ही रहना चाहिए। अब स्थितियाँ बहुत बदल चुकी, अब हर जगह फौज है, अब फौज की बात अलग तरह से की जाती है, 63 में 62 में अलग तरह से की जाती
भी बात होती है, एयर स्ट्राइक की भी बात होती है, होर्डिंग्स पर सेना आ
रही है, इसको लेकर आम सहमति है। तो आप नेहरू का, नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है इस समय, लेकिन नेहरू का जो फैसला था उसकी कुछ तो बुनियाद रही होगी।
सब बुनियाद यह है कि आप देखिए, अगर हम वापस उस समय का कल्पना भी करें, पार्टीशन के बाद जिस प्रकार से एशिया के महाद्वीप में नए नए देश बने थे, अगर आप मान लीजिए कि सन 50 से लेकर सन 60 तक जो भी हमारे इलाके में पड़ोसी देशों का अगर आप समीक्षा करें, एक बहुत बड़ा डर था कि मिलिट्री कू हो जाएगा। पाकिस्तान में तो हो गया था, आपको याद होगा जिस प्रकार से वहाँ पे अयूब खान साहब ने कब्ज़ा कर लिया था, वो एक बहुत बड़ा डर था। साथ साथ हमारे दूसरे पड़ोसी जो बर्मा था उस वक्त, अभी म्यांमार है, वहाँ पे भी आर्मी का बहुत बड़ा भूमिका था। इंडोनेशिया में आप देखिए, वहाँ पे भी आर्मी
का, सेना का दबदबा।
तो अफ्रीका में भी धीरे धीरे इसी प्रकार के मिलिट्री को होने लगे। तो पंडित नेहरू के मन में शायद ये एक काफ़ी, मैं कहूँगा कि गहरी तरीके से उनके मन में यह था कि फौज से वो उतना कंफर्ट लेवल उनका सही नहीं था। ये मैं एक एनालिस्ट के रूप से, मैंने कई सालों से इसकी मैंने काफ़ी जाँच की है, पंडित नेहरू के मन में ये था कि आज़ाद भारत के लिए इस प्रकार का एक पावरफुल मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है और हमें जितना भी रिसोर्सेस हैं उनको डेवलपमेंट सेक्टर में डालना चाहिए। और शायद उनका जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था अंग्रेज़ों के साथ, और जिस प्रकार से यही सेना, चाहे वो World War I, World War II या जो भारत के अंदरूनी जो भी उन्होंने भूमिका किया है, ये कॉलोनियल आर्मी था, उसमें कोई शक नहीं है।
दो श्रोता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक उनको लेते हैं। क्या नाम है आपका?
हाँ, राम रतन दीक्षित, मध्य प्रदेश के जतारा तहसील टीकमगढ़ से।
टीकमगढ़ से दीक्षित साहब बोल रहे हैं, श्रोता हैं बीबीसी हिंदी रेडियो के?
हाँ जी सर, 1962 से।
1962 से सुन रहे हैं आप, देखिए।
हाँ, लगातार मेरे पास 3 रेडियो है सर।
अच्छा, तो दीक्षित साहब बताइए कि ये जो अभी हमने नेहरू की बात की, प्रधानमंत्री मोदी की बात की, ये फैसले में कुछ अंदेशे भी हैं, आप क्या सोच रहे हैं?
ये बात कैसे है कि एक दो सोच हो सकती है, बातें हो सकती हैं, परंतु अभी आज के समय में जो माननीय मोदी जी ने कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज की परिस्थितियों में ऐसा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का एक चीफ बनाना बहुत ही अच्छा कदम है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित साहब, आप सुनते रहिए।
एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए।
आवाज सुनने में बहुत मुश्किल हो रही है,
मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है। एक और श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी आप सुन पा रहे हैं अगर हमें, तो अपनी बात रखिए, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?
जी सर,
आप सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
हाँ सर, पहुंच रही है।
जी तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना
है? नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं बाबूलाल जोरड़ बोल रहा हूँ, राजस्थान बीकानेर से, रामासर गाँव से।
रामासर गाँव से, आपके गाँव में ढाणियाँ हैं या बीकानेर के एकदम पास रहते हैं?
सर बीकानेर से 100 किलोमीटर दूर हूँ, मैं अभी बीकानेर रूम लेकर रह रहा हूँ, छात्र हूँ।
अच्छा, बीकानेर में रह रहे हैं। तो ये जो वात्सल्य जी ने सवाल पूछा,
जी सर
वात्सल्य जी पूछिए।
जी CDS की नियुक्ति को लेकर आप क्या राय रखना चाहते हैं इंडिया बोल में?
सर मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे तीनों सेनाओं के मध्य आपसी समन्वय बढ़ेगा और किसी भी सर बाहरी आपत्ति की स्थिति में बहुत अच्छा काम होगा सर।
जी राजेश जी, अभी तक जितने लेकिन एक शंका की जो बात उस समय हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा वायुसेना के अंदर शंकाएं थी, तो अब क्या लगता है कि वो शंकाएं दूर हो गई होंगी या सरकार की तरफ से फैसला आ गया है तो वो फैसला मानना ही होगा?
नहीं, पिछली बार भी ये तो जो ऑब्जेक्शन था जो वायुसेना की तरफ से ही था कि उन्होंने इसको शायद स्वीकार नहीं किया था, जब कारगिल के तथ्य आप बताएंगे, कारगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बनी थी उसमें इसका रिकमेंडेशन था।
लेकिन तो जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि आपने कहा 20 साल क्यों लगे, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो राजनीतिक सहमति नहीं बनी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी जब अटल जी थे, सुना है कि लोगों ने जाके अटल जी से कहा कि साहब आप इसको जल्दबाजी ना कीजिए, ये पॉलिटिकल डायमेंशन था। दूसरा एयरफोर्स के तरफ से भी एक हिचक था, तो उन्होंने भी अपनी राय बनाई है। पर आप देखिए कितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जब ढांचे का परिवर्तन हुआ है सुरक्षा और खास फौज का, तो ये टॉप डाउन हुआ है, यानी कि ये फौज के बीच में सहमति से नहीं बनी है, क्योंकि कोई भी फौज चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो, स्थल सेना, वो अपनी जो कमांड है, जो टर्फ जिसको कहते हैं, वो उसको स्वीकार यानी कि किसी और को सौंपने के लिए तैयार नहीं होती। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो निर्णय लेते हैं, और बार बार अमेरिका का जिक्र होता है कि अमेरिका में चार अलग हैं, वहाँ पे आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, एक मरीन्स भी है, यानी कि चार अलग अलग। तो अमेरिका के सिविलियन लीडरशिप, उनके जो कांग्रेस में है, जो सेनेट में जो लोग हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बहुत अहम है, ये गोल्ड वाटर निकल्सन एक्ट उन्होंने अप्रूव किया था, उसी से प्रेसिडेंट ने आदेश दिया था, और चारों जो इंटेग्रेशन था उन्होंने पॉलिटिकल डायरेक्शन पे किया था। मोदी साहब ने उस प्रकार का मैं कहूँगा साहस दिखाया है जो कि पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं इस प्रकार का कदम उठाया है, और अगर इस वक्त सेनाओं में सहमति बन रही है, शायद उन्होंने भी ये पहचान लिया है कि इशारा जो है वो काफ़ी स्पष्ट है पॉलिटिकल लेवल से कि इंटेग्रेशन की तरफ जाना चाहिए। कई श्रोताओं ने कोऑर्डिनेशन की बात की, मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा भारत के लिए फ़ायदा क्या है। मोदी साहब ने कहा कि मिलिट्री फोर्सेज शुड बिकम मोर इफेक्टिव, अर्थात ये कि अभी वो इतने इफेक्टिव नहीं है। कारण क्या है? इंटेग्रेशन नहीं हो रहा है ऑफ रिसोर्सेस, चाहे एयर पावर हो, सर्वेलेंस हो, सैटेलाइट हो, जो भी है, अलग अलग ढांचों में तीनों सेना अपना अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन कमांडर भास्कर, अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये जो नई नियुक्ति होगी इनकी क्या अख्तियारात होंगे, क्या शक्तियां होंगी, किन से कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप यानी राजनीतिक नेतृत्व को सीधे रिपोर्ट करेंगे, फिर तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उनके मुख्य जो प्रमुख लोग हैं उनका क्या रोल होगा, ये सब चीजें अभी बहुत
ये अभी तो पब्लिक में नहीं है। अभी ये क्या पोस्ट पीएमओ में होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री में होगी, ये सब कुछ
अभी सामने देखना नहीं है। आप देखिए पिछले मोदी वन से लेके मोदी टू, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म उनके 5 साल हो गए, अभी सेकंड टर्म शुरू हुआ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे जो दोवल साहब हैं, उन्होंने उनका जो पोजीशन है उसको और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस दिया है, उनको कैबिनेट स्टेटस दे दिया है, और उनको बना दिया है अध्यक्ष जो डिफेंस कमेटी है, उस डिफेंस कमेटी में तीनों सर्विस चीफ हैं। तो धीरे धीरे हमारे ढांचे में बदलाव आ रहा है। तो मेरी राय, व्यक्तिगत राय, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सबसे जो ज़रूरी ये है कि ये देखना है कि जैसे मैंने पहले कहा, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी डिफेंस सेक्रेटरी के पास है
जी।
इस ढांचे को बदलने के लिए रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ बिजनेस को बदलना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्या भूमिका होगा, उनका रिलेशनशिप
इससे कहीं और पेचीदगियां तो नहीं हो जाएंगी कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो उनकी अपनी ताकत, उनको लगे कि यह कमजोर हो रही है, सेना के अंगों को ये लगे कि उनकी ताकत कमजोर हो रही है। ये एक मिनट इस सवाल पे आएंगे, लेकिन पहले दो श्रोता इंतजार कर रहे हैं। जी अपना नाम बताइएगा, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, हमारी आवाज आप तक आ रही हो, तो अपना नाम बताइए, और या हमसे आपका संपर्क अभी भी अगर बना हुआ है तो अपना नाम बताइएगा।
सर मैं अली मोहम्मद बात कर रहा, जिला कोलार कर्नाटक से।
अरे कर्नाटक से बोल रहे हैं अली मोहम्मद साहब
जी,
और लगता है रेडियो पर सुन भी रहे हैं आप हमें।
एक तो मेरी शिकायत ये है कि साल तक क्या 5-4 साल तक भी आपका कॉल नहीं लगता, अगर कॉल लग जाए तो होल्ड पे छोड़ देते आप।
ये देखिए माफी चाहते हैं अली मोहम्मद साहब,
हम आपका प्रोग्राम भी नहीं सुन सकते इंडिया गोल और हमारा फोन भी नहीं लगता।
अब ये मैं माफी ही चाह सकता हूँ। और देखिए आपने कमांडर उदय भास्कर को भी हंसा दिया इतनी गंभीर चर्चा में, लेकिन आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ, फोन लगने में वाकई दिक्कत होती है।
सन 84 से आपका प्रोग्राम सुनना, बल्कि हिंदी उर्दू दो प्रोग्राम में नहीं छोड़ता कभी भी।
अच्छा, क्या बात है, पुराने श्रोता हैं आप।
जी,
तो आप बेंगलोर में रहते हैं।
दो तीन बार आपको खत भी लिखा, खत का भी कोई जवाब नहीं आया।
आपके शिकवे शिकायत अली मोहम्मद साहब वो हमारे सर माथे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मौजूए सुखन पे आए इस वक्त जो बातचीत हो रही है उस पर अगर आप तवज्जो।
आज मुझे भरोसा था कि इंडिया गोल एक घंटे का होगा, शायद आज मेरा फोन लग गया।
अच्छा, इसको आप इंडिया बोल कहें तो ज्यादा अच्छा है, मैं सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया गोल तो इसको इंडिया बोल कहें और आपका फोन लग गया, आपका स्वागत है
भाई। दिन भर जो है आज एक घंटे का हो गया कल से आपका
जी,
तो इसी वजह से आज मुझे भी उम्मीद थी कि आज हो सके, मेरा गोल भी लग सके।
और आपकी उम्मीद पूरी हो गई है। अब ये बताइए कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फैसला हुआ है, आप
मेरी राय तो यही है कि एक ही आदमी के हाथ में अगर सारा पावर हो जाए तो ये इतना बड़ा सामान को किस तरीके से संभाल सके एक आदमी।
वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा, ऐसा कह रहे हैं तमाम हमारे जो सामईन हैं, श्रोता हैं।
जी जी,
आप क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी?
अजी ये तो देखो, अगर यहाँ गांव के अंदर एक चेयरमैन होता है, उसके कितने मेंबर होते हैं, तो एक ही आदमी के हाथ में कितने पावर दे दो, तो उनकी जरूरत क्या है मेंबर हो गया।
आप कुछ कहना चाहेंगे कमोडोर उदय भास्कर
साहब? देखिए, जिस प्रकार से अभी CDS का जो कल्पना होगा या इसका जो डेफिनेशन होगा, जिसका भूमिका क्या होगा, इस प्रकार के जितने भी आपने जो मुद्दे उठाए हैं उनका ज़रूर समीक्षा होगा। आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जैसे सबसे जो अहम है, जिसके पास पूरा पावर है, लोकतांत्रिक ढांचे हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री। तो उनके साथ एक कैबिनेट है, कैबिनेट में अलग अलग मंत्री हैं, उनके जिम्मेदारियां हैं। तो जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन को बेहतर करने के लिए सब लोगों ने यह स्वीकार किया, जैसे मैंने पहले कहा अरुण सिंह कमेटी वगैरह, कि भारत के ढांचे में एक सिंगल पॉइंट जो एडवाइस होता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, वो इस वक्त उस प्रकार से नहीं मिल रहा है जैसे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने CDS का रेकमेंडेशन किया है। और मोदी साहब ने जो रेड फोर्ट से जो घोषित किया है, जो ऐलान किया है, वो एक राजनीतिक अप्रूवल है कि हम CDS बनाएंगे। उसकी क्या रूपरेखा होगा, क्या जिम्मेदारियां होंगे, किस प्प्रकार से वो गवर्नेंस, ये बहुत ज़रूरी है। वी नीड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये CDS को आप एक परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में नहीं बनाना चाहिए
जी।
अगर हम सही प्रकार से एक सकारात्मक अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो रोल ऑफ CDS हैज टू बी डिफाइंड बहुत ही
साफ तौर पे, उसको
कानूनी इसको जामा पहना। अली मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद कहते हैं। और एक और श्रोता है, उनसे बात करते हैं
जी। अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर, आप क्या कहना चाहते हैं?
हेलो
जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हाँ जी, हाँ जी, हेलो
जी। आप अपना नाम बताइए पहले।
मेरा नाम प्रीतम सिंह, जिला सीतापुर से बोल रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश से।
सीतापुर से बोल रहे हैं प्रीतम सिंह जी।
हाँ, मोदी साहब ने काम तो बहुत अच्छा किया, पर इसमें ये खतरा साहब हो सकता है कि कहीं लोकतंत्र जैसे दूसरे देशों में मिलिट्री शासन हो जाता है, वहाँ फिर ये दब जाता है लोकतंत्र, ऐसा ना हो जाए।
मतलब आपको इस तरह की चिंता है कि ऐसी स्थिति ना आ जाए। कुमार साहब,
दूसरे देशों में, कई देशों में ऐसी स्थिति हो जाती है,
दूसरे देशों में स्थिति आ जाती है, इस सवाल पर हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, आपके जाने का भी वक्त हो रहा है उससे पहले, कि जिन सैन्य सुधारों की बातचीत होती है, CDS की नियुक्ति जो है उस दिशा में पहला कदम है, इसके बाद और भी ऐसे फैसले दिखेंगे, या यही एक कदम है जिससे सारे बदलाव आपको आते हुए दिख रहे हैं?
नहीं साहब, मैं दोबारा कहूंगा कि CDS का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, वो पूरे ढांचे में जब परिवर्तन होगा उसका एक ये खास भाग होगा, क्योंकि इंटेग्रेशन की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे तीनों जो सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ढांचे के बाहर हैं
जी।
तो इसलिए इंटेग्रेशन के अलावा कई और भी मैं कहूँगा मुद्दे हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, इस वक्त भारत का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में हैं, डिफेंस का अलग होता है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के इंटेलिजेंस अलग अलग है। तो ये एक आपका उदाहरण है। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको हम कहते हैं, DRDO, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, मेक इन इंडिया। और ये भी निर्णय लेना है कि भारत को और पनडुब्बी और फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहिए जैसा राफेल एयरक्राफ्ट है, या हमको साइबर और स्पेस और स्पेक्ट्रम की तरफ जाना चाहिए, क्या नए कमांड की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के जो बड़े भारी जो निर्णय है, जो डिसीशन है, ये CDS के आधारित हो सकता है। और पूरे ढांचे में संक्षेप में जो सवाल आपने उठाया राय साहब, कि बहुत ज़रूरी है कि ये CDS को आप एक ही मुद्दा करके परमानेंट चेयरमैन जैसे मत बनाइएगा। आप इसका देखिए कि मिलिट्री को गवर्नेंस में आप किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं, वो सबसे मोदी साहब का मैं कहूँगा एक प्रकार का कल्पना है और वो देखना है। मैं एक बात बताऊं, जैसे नरसिम्हा राव साहब ने भारत के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था
जी,
इस वक्त मैं कहूँगा मोदी साहब के सामने चुनौती ये है कि हम सिक्योरिटी सेक्टर में रिफॉर्म और जो मॉडर्नाइजेशन हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं।
इससे पहले कि, क्योंकि मुझे मालूम है आपका समय हो रहा है सी उदय भास्कर साहब, जाते जाते एक सवाल का जवाब ये देते जाइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की, क्या उससे पहले सेना के तीनों अंगों से सलाह मशविरा हुआ होगा? अंदाजा तो लगा ही सकते हैं।
मुझे लगता है साहब दोवल साहब ने जो भी उनको एडवाइस दिया होगा उसी के आधारित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने अगर कुछ कदम उठाया
है। अच्छा, आपको लगता है कि ये नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं?
बिल्कुल, क्योंकि उनका बहुत बड़ा भूमिका है आजकल।
तो अब इसमें हायरार्की में NSA कहाँ होंगे, डोभाल साहब जो है वो किसके ऊपर या किसके नीचे रहेंगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि NSA
जिसका जवाब हमारे पास नहीं है,
वो ढांचे में और CDS और NSA के बीच में किस प्रकार का रिश्ता होगा।
अमेरिका को मॉडल माना गया है तो उस तरीके से तो वो
सब अमेरिकन मॉडल से मैं कहूंगा कि भारत केवल हम एकाध ऐसे शायद जो कहते हैं कि हम क्यों ले सकते हैं, पर उसको हम यहाँ पे ग्राफ्ट या उसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते। भारत को अपना मॉडल बनाना चाहिए।
कॉमोडोर उदय भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्दी में हैं। हम चाहते तो मतलब ये थे कि आप पूरे कार्यक्रम में रहें, लेकिन फिलहाल अब आप क्योंकि जल्दी में इसलिए जा सकते हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अभी जारी है, एक श्रोता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनका हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, नाम बताइएगा।
राजेश सर नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार
सर, भारत सिंह राठौर बोल रहा हूँ, जावरा मध्य प्रदेश से।
जी राठौर साहब, भारत सिंह राठौर जी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, आपका फोन लग गया।
जी सर लग गया, आप कैसे हैं आप सभी?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने चर्चा सुनी इतनी देर तक?
सर मैं लगातार सुन रहा था, आप लोगों को सुनता ही रहता हूँ।
तो अपने विचार भी व्यक्त कीजिए आप।
सर मेरा इतना है कि विश्व में कितने देशों में इस प्रकार का CDS सिस्टम लागू है और वो कितना सफल और कितना असफल है, ये उदय सर से पूछिएगा जरूर।
उदय सर तो अभी यहाँ से स्टूडियो से निकल चुके हैं, लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका?
जी सर नमस्कार। सर
नमस्कार, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम देशराज है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से बात कर रहा हूँ। सर
देशराज जी, जल्दी से कहिए अपनी बात बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय कम है।
सर देखिए, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कार्य जो मोदी जी ने अब किया, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का, इसका निर्माण ये पहले हो जाना चाहिए था तो हमें पुलवामा जैसे हमले अटैक नहीं झेलना पड़ता।
जी आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया राजेश जी। अब हम इंडिया बोल में, क्योंकि उदय भास्कर साहब भी चले गए हैं, चर्चा बड़ी लंबी हुई, सार्थक हुई, श्रोताओं ने भी अपनी बात रखी, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आज खेल की दुनिया में क्या हालचाल है, श्रोताओं को ये भी बता दीजिए।
जी वात्सल्य, अगर खेलों की दुनिया की बात की जाए तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज मैच के चौथे दिन थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 235 रन बना लिए थे। स्टीव स्मिथ ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, वो 92 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर LBW आउट हुए। हालांकि एक समय जब वो 80 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे तब रिटायर्ड हट भी हुए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है वात्सल्य, जैसे इस तरह से इंग्लैंड की पहली पारी 258 रन पर समाप्त हुई, आज थोड़ा खेल बचा है, उसके बाद कल का खेल, यानी ये मैच निश्चित रूप से अगर कोई बहुत बड़े चमत्कार ना हो तो ड्रॉ की तरफ। उधर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आज मैच के चौथे दिन मेजबान जो श्रीलंकाई टीम है वो जीत के काफ़ी करीब पहुंच गई है, क्योंकि उनके सामने जीत के लिए 268 रनों का लक्ष्य है और आज उसने जब खेल समाप्त हुआ बिना किसी नुकसान के 133 रन बना लिए थे। अब श्रीलंका को जीत के लिए 135 रनों की ज़रूरत है और 10 विकेट उसके हाथ में है।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। खेल समाचारों के लिए। और श्रोताओं, अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। भारत सरकार का कहना है कि भारत प्रशासित कश्मीर में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर घाटी के 100 टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 चालू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। खबर है कि इटली पहुंची प्रवासी नाव में सवार करीब 30 बच्चों को उतरने की इजाज़त दे दी गई है। लीबिया से निकली इस प्रवासी नाव में 134 लोग सवार थे, जिन्होंने तट तक पहुंचने के लिए 16 दिन का इंतजार किया। इटली के गृहमंत्री मात्यो साल्विनी का कहना है कि इतने दिन में तो नाव स्पेन पहुंच सकती थी। उन्होंने ओपन आर्म्स चैरिटी पर प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीतिक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। हांगकांग में एक सप्ताहांत लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कई शांतिपूर्ण रैलियां निकाली। हजारों शिक्षक हांगकांग के मुख्य द्वीप पर भारी बारिश के बीच इकट्ठा हुए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज बस इतना ही। इस एक घंटे के प्रसारण के संपादक थे राजेश जोशी। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। फिलहाल वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।